ओम शांति। तो आज का हमारा विषय है बंदर से मंदिर लायक। वैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को क्या करते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं। रावण कौड़ी बनाता है और बाबा आकर के हीरा बनाता है। और कल की मुरली में बाबा ने कहा कि रावण को परास्त करने के लिए राम की सेना दिखाई है और मुंह बंदरों का दिखाया है, है ना? तो कभी बाबा बोलते हैं कि बाबा बंदरों को मंदिर लायक बनाने के लिए आए हैं, आज कहा कौड़ियों को हीरा बनाने आए हैं। तो देखते हैं कि बाबा कैसे हमें कौड़ी से हीरा या बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि अगर हम बंदर हैं माना क्या चीज है हमारे में, और अगर हम मंदिर लायक बन जाएंगे तो क्या चीज होगी हमारे में। पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि मंदिर लायक कौन होता है और बंदर क्या होता है। तो बंदर की क्या होती है विशेषताएं? हाँ, जैसे कि पांचों विकार से भरपूर होता है वो, है ना जी? टिक कर नहीं बैठ सकता है, इधर से उधर उछल कूद करता रहता है, और मोह इतना रहता है कि बच्चे को छाती से लगा के रखता है, और अगर उसकी मृत्यु भी हो गई ना तो भी पकड़ा रहेगा। उसका मांस आदि लटक लटक के भले निकल जाएगा, वो कंकाल को पकड़े रहेगा। तो पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, लेट गो नहीं करना, ये बंदर की विशेषता होती है। इंग्लिश में बंदर को मंकी बोलते हैं, M O N K Y, और अगर Y निकाल देंगे तो मंकी से मॉन्क बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो बताते हैं कि गांव में, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में किसान रहता था, और एक बंदर ने उसने बड़ा परेशान कर रखा था। कैसे? तो जब किसान घर पे नहीं होता था, खेती के काम से घर से दूर जाता था, तो बंदर पेड़ों से उछल कूद के खिड़कियों के माध्यम से इसके घर के अंदर एंट्री कर देता था, और अंदर घर में प्रवेश करके इस किसान ने जो एक बड़े बर्तन में केले रखे हुए हैं, वो सारे केले चुरा के चला जाता था, और शाम को जब किसान आवे तो केले नदारद। तो बड़ा परेशान था, और उन दिनों ये प्रथा थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो साधुओं से राय सलाह करके इसकी समस्या का समाधान ढूंढते थे। तो गांव में तो रहता था, तो पास की पहाड़ी पर, चोटी पर एक साधु भी रहता था। उसके पास गया, भाई मेरी ये समस्या है, तो मैं क्या करूं, काफी परेशान हूं। और साधु ने बहुत अच्छी आइडिया दी कि इसका उपाय तो बहुत सिंपल है, आप कहा कि अब केले उस घड़े में रखो जिस घड़े का मुंह बहुत तंग हो, बहुत छोटा हो, बहुत नैरो हो, और उसको सील करके भी रख लेना। फिर उसने ठीक ऐसे ही किया, आया अब की बार खुले बर्तन में नहीं रखकर बड़ा घड़ा जिसका मुंह तंग है, जिसमें एक समय पर एक केला ही ऊपर से जा सकता है, ऐसे वाले में उसने रख दिया। और फिर जैसे काम पे चला जाता था, चला गया, और बंदर जैसे आदि था कि इस टाइम किसान नहीं होता है, मुझे चलो वहाँ पे केले लेके आना है। तो वो अपनी आदत के अनुसार वो भी घर के अंदर प्रवेश किया और अब की बार तो देखा कि भले सील लगी है, सील तो फाड़ दी उसने, मुंह छोटा है अभी, अक्कल तो इतनी काम की नहीं, पर केला तो जरूर दिखा उसमें, हाथ तो चला गया डाला तो, लेकिन जब हाथ अभी निकालना है तो केले के साथ निकालना है ना उसको। अब उसका तो मुंह बहुत छोटा है तो हाथ निकल ही नहीं रहा है उसका अभी। लेकिन जैसे कहा ना कि बंदर की विशेषता पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, तो थोड़ी सी तो अक्ल नहीं आई ना उसको कि मैं केला छोड़ के हाथ निकालूं। नहीं, केला भी पकड़ूंगा और नहीं निकल रहा है तो सारी कोशिशें करके थक भी गया, बैठ गया, पर वो केले को नहीं छोड़ रहा है, मुट्ठी खोल ही नहीं रहा है। तो काफी देर हो गई, तो काफी देर होने से किसान भी लौट आया और बंदर रंगे हाथों पकड़ा गया। वैसे तो चोरी करके भाग जाता था, पर आज के दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया और डेफिनेटली उसकी खूब पिटाई की, खूब पिटाई की, तो उसको पीड़ा हो रही है। किसी को आप मारेंगे तो पीड़ा तो होगी, दर्द तो होगा, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं छोड़ रहा है, मुट्ठी नहीं खोल रहा है। मंकी है ना, मंकी, मंकी से मॉन्क बनने के लिए उसको हाथ छोड़ना पड़ेगा। अर्थात वैराग्य क्या है, उसके प्रति अटैचमेंट, केले के प्रति, केले के प्रति अगर वैराग्य आ जाए उसको, किस केले के कारण मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूं, केले को छोड़ दूं तो मैं यहां से भाग सकता हूं, कहीं और केले मिल सकते हैं, परंतु नहीं, कहा ना उसको पकड़ के रखने की आदत है, भले वहां पे मर भी क्यों नहीं जाऊं मैं, लेकिन इस केले को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर ये भाव, क्योंकि बाबा ने कहा मैं तुम बंदरों को, तो समझ गए हमारे में भी कौन सी आदत होती है, पकड़ के रखने की, जकड़ के रखने की। भगवान ने आके ज्ञान दिया कि जब तुम परमधाम से उतरे थे न अंगे आए थे, जिसको नंगे बोलते हैं, ये शरीर नहीं लेकर आए थे, मन भी नहीं लेकर आए थे, वो तो यहां आने के बाद मिला है, और अब घर जाने का समय आ गया है, तो जैसे आए थे वैसे जाना है, तो जो लेकर नहीं आए थे यहां सब छोड़ना है। पर हम तो पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान को अधिकार है बोलने का, तुम बंदर बन गए हो। हाँ, क्योंकि हमको देखता है ना, क्या नहीं छोड़ रहे, नाम रूप, आज भी परिचय में वही भरा रहता है, मैं कौन हूं, मैं धनवान हूं, मैं कौन हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं कौन हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं कौन हूं, मैं यहाँ के समाज का, मोहल्ले का लीडर हूं, आज भी यही भरा रहता है, छोड़ा ही नहीं है हमने बॉडी कॉन्शियसनेस, और इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है तुम बंदरों को अब मैं मंदिर लायक बनाता हूं। तो मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर और हम थोड़ा थोड़ा छूट रहा है हमारा बंदरपना, अभी पूरा नहीं छूटा है पर छूट रहा है। जिस दिन बाबा के पास आए थे और तब से लेके आज दिन, कुछ तो अंतर आया है ना, भले 100% चेंज नहीं आया लेकिन कुछ तो आया है, मतलब उस प्रक्रिया में तो हम हैं कि हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। तो हमारा परिवर्तन का दौर का अंतिम लक्ष्य क्या है कि बंदर से मंदिर लायक, इतना परिवर्तन हमें लाना है, और इतना परिवर्तन लाने के लिए हमें करना क्या है। तो बंदर तो समझ में आ गया कि ये स्टेज हमारी पहली थी और अंतिम हमारी क्या होनी है, मंदिर लायक। और मंदिर में कौन बैठी होती है, मूर्ति बैठी होती, वो देव भी हो सकता है, देवी भी हो सकती है। और अगर वो शिवालय है तो शिवलिंग, और देवालय है तो देव या देवी। तो बेशक हम आत्माएं हैं तो हम देव या देवी बनेंगे, शिवालय में तो खुद परमात्मा का इमेज रहता है। तो जब हमें मंदिर लायक बनाने आया है, मतलब देव और देवी बनाने आया है। अब वो बनाने आया है तो बंदर की बात समझे कि क्या होता है। अभी मंदिर की मूर्ति में क्या होता है बताओ, दिव्यता होती है। और क्या होता है जी, हाँ, हर्षित मुख होते हैं और आकर्षित, और सबसे बड़ी विशेषता अगर मूर्ति की है, मूर्ति अपने स्थान पर अचल अटोल स्थित रहती है। न सिर्फ अपने स्थान पर अचल अटोल स्थित रहती है, मुख भी नहीं खोलती है, मौन रहती है। भले ही आने वाले भक्त उसके सामने जाकर कुछ भी कह रहे हो, उसके प्रति उत्तर में वो मुख नहीं खोलती है, मौन में ही रहकर आए हुए भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें कि बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बनाने आया है, वो मूर्ति हमें उसे बनाना है, वो देव या देवी उसे हमें बनाना है, तो हमें कौन सा गुण धारण करना होगा, मौन में रहने का। भट्टी पहले दिन से ही क्या बताया गया आपको, दिनचर्या के साथ साथ विशेष डायरेक्शंस के नाम पर तीन प्रकार के मौन बताए थे, क्योंकि इस मौन में ही परिवर्तन की प्रक्रिया सक्रिय होती है। पर कभी कभी हमें उस मौन के पीछे का विज्ञान अगर पता नहीं होता है ना, तो उस मौन के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है। उस मौन को अभ्यास में लाने के लिए हम उतने क्या बोलेंगे उसको, कंसर्न नहीं रहते हैं, उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान अगर मुझे समझ में आ जाए ना, तो हमारा विश्वास मौन के प्रति बढ़ेगा। और उस मौन के प्रति जितना विश्वास बढ़ेगा, उतना हम अभ्यास बढ़ाएंगे, और उतना उस अभ्यास के फल स्वरूप हम पाएंगे कि हमारे में परिवर्तन तीव्रता से आ रहा है। तो क्या है मौन के पीछे का विज्ञान, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। संगीतज्ञ इस बात के अनुभवी हैं, वे कहते हैं कि एक कमरे में, हाँ, कमरा कैसा हो, खाली हो, कमरा कैसा हो, दरवाजे खिड़कियां बंद हो, ऐसे एक कमरे में दो अलग अलग कोने में दो अलग अलग वीणा सितार रख दी जाए, और एक कोने में रखी हुई वीणा को अगर एक वीणा वादक जाकर के उसके तारों को छेड़ दे, उसमें संगीत उठा दे, तो दूसरे कोने में जो वीणा रखी हुई है बिना छुए उसके भी तार झंकृत हो जाते हैं, उसके भी तार झंकृत हो जाते हैं। सुना है ये? नहीं सुना है? ये संगीतज्ञ जो होते हैं ना, म्यूजिशियंस, उनके पास जाके कभी सुनना, वो प्रैक्टिकल अनुभवी है इस बात के कि मैंने इस वीणा को, लेकिन शर्त है कमरा खाली हो, शर्त है कमरा बंद हो, और दो कोने में दो वीणा रख दी, एक वीणा को फिजिकली जाके तारों को छेड़ा गया, संगीत पैदा किया गया, और दूसरे कोने में रखी वीणा अपने आप उसके तार झंकृत हो गए। कैसे होते हैं? तो जब एक वीणा को फिजिकली जाकर तारों को छेड़ा गया, संगीत पैदा हुआ, तो वो जो संगीत पैदा हुआ वो हवा में मूवमेंट पैदा कर दिया उसने, हवा में आंदोलन पैदा कर दिया, मूवमेंट पैदा कर दिया, और उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से संगीत की लहरी हवा में फैलती चली जाती है, वो वाला वाइब्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है, और वो वाइब्रेशन जाकर उसमें संगीत पैदा कर देता है। मानो कि वो जो तार दूसरी वीणा के तार नींद में स्थिर पड़े हैं, माना नींद में सोए पड़े हैं, लेकिन वहां से निकले स्पंदन ट्रेवल करके इसके पास जाकर उस नींद में पड़े हुए तारों को जैसे कि जगा देते हैं, जैसे हम सभी सुबह उठते ही जाग जाते हैं, रात को हम भी क्या होते हैं, सोए पड़े होते हैं। सोए पड़े होते हैं मतलब क्या होते हैं, निष्क्रिय। तो वीणा के तार भी ऐसे ही निष्क्रिय पड़े हैं, मतलब सोए हैं, लेकिन सुबह होते ही जैसे आंख खुलती है, या कोई थोड़ा सा आके यूं कर देता है, या थोड़ी सी आवाज लगा देता है, जाग जाते हैं। ऐसे वहां के जो स्पंदन निकले हैं वो वहां तक जाकर उस सोए हुए तारों को मानो जगा देते हैं, और वो ऐसे जग जाते हैं जैसे सुबह हो गई है, नींद पूरी हो गई है। ऐसे ही कहते हैं इसको, जो ये विज्ञान है इसको कोई नाम नहीं दे सका कि आखिर किस प्रकार का विज्ञान है, लेकिन कहते हैं एक आज से करीब 150-200 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने इस विज्ञान को एक नाम दिया। नाम तो नहीं दिया, सिर्फ लयबद्धता कह दिया, लेकिन फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आया जिसने आज से 40-50 वर्ष पहले उसको नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। अच्छा, ये वैज्ञानिक जिसने 150 या 250 साल पहले इसको समझा, ये वैज्ञानिक असल में एक किले में, एक पुराने किले में मेहमान के तौर पर गया था, एक राजा के पास मेहमान के तौर पर गया था, और उसे एक कमरे में ठहराया गया, और जिस कमरे में उसको ठहराया गया ना, वहां की दीवार में, एक ही दीवार में दो घड़ियां लगी हुई थी, पुराने जमाने की जो पेंडुलम होता है, ऐसी दो घड़ियां लगी हुई थी वहां पर। और इसकी नजर, क्योंकि मेहमान अकेले कमरे में होता है तो अकेला मतलब नजर डालता, और वैज्ञानिक है वो, तो वैज्ञानिक तो ऑब्जर्वेशन में ही लगे होते हैं, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दो घड़ियां हैं दोनों में लयबद्धता है, दोनों के जो पेंडुलम चल रहे हैं बिल्कुल एक से चल रहे हैं, जो उनके मिनट और सेकंड के काटे हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे हैं, सेकंड का भी अंतर नहीं है। तो उसको वंडर लगा, ये कैसे, एक सेकंड का भी अंतर नहीं। आज आप देखो इतनी सारी घड़ियां होती हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए हमको पहले दिन कहना पड़ा था आपके इसमें जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है मोबाइल में उसको बंद कर दो, क्योंकि वरना थोड़ा थोड़ा भी अंतर होगा कितनी बार बजेंगे ट्रैफिक कंट्रोल। तो उसको बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कैसे कि एक सेकंड का भी अंतर नहीं, इतनी लयबद्धता कैसे। तो सोचता है शायद संयोग होगा, अब वैज्ञानिक माइंड है तो एक रात में क्या करता, रात को क्या किया उसने, एक घड़ी को बंद कर दिया, एक को चालू रहने दिया और एक को बंद कर दिया। और जब सुबह उठा तो रात को जिस घड़ी को उसने बंद किया था सुबह उसको चालू कर दिया। और चालू करके टाइम सेट करना पड़ता है ना, क्योंकि तो रुक गई, टाइम तो आगे बढ़ गया, तो इसने टाइम सेट किया। आखिर किससे करेगा, वो चालू घड़ी से, लेकिन जानबूझकर 3-4 सेकंड का फासला रख दिया उसने जानबूझकर, क्योंकि उसको समझना था ना इस चीज को कि ये संयोगवश हुआ है या इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है, उसको समझना था। तो जानबूझकर 3-4 सेकेंडों का उसने फासला रख दिया। रात होते मतलब जैसे समय बीत रहा है वो देख रहा है ये 3-4 सेकेंड का फासला थोड़ा कम हो रहा है। और 24 घंटे होते होते फासला जीरो हो गया, दोनों पेंडुलम जैसे कि एक ही लय से एक, अगर वो बीच में है तो इसका भी पेंडुलम बीच में, अगर इसका पेंडुलम एकदम इस छोर पे तो उसका भी इस छोर पे, कांटे अगर ये दो पे तो इधर का भी दो पे। तो उसने समझा ये संयोग नहीं है, इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा है। कौन सा विज्ञान काम कर रहा है अब मैं इसको समझूंगा। तो आया था राजा के पास मेहमान बनकर 1-2 दिन के लिए सिर्फ, लेकिन जब उसने ये सब देखा तो सप्ताहों तक वहां रुका रहा, तब तक जब तक कि इसका राज उसको समझ में नहीं आया। और जो सप्ताहों तक रुका रहा राज कैसे समझ में आया, कैसे उसने इसकी स्टडी की कि आखिर भी क्या राज है, वो क्या करता था, दीवाल के पास जाकर अपने कान लगा लगा कर रखता था। और वह कान लगा लगा कर उसने देखा जो एक घड़ी की टिक टिक है वो दूसरे घड़ी के पेंडुलम को जाकर मूवमेंट प्रदान कर रही है। एक घड़ी की टिक टिक दूसरे घड़ी के पेंडुलम को मूवमेंट प्रदान कर रही है, और उसमें से जो दो घड़ियां हैं उसमें से एक बड़ी है एक छोटी है, मतलब बड़ी है शक्तिशाली है, तो बड़ी है शक्तिशाली है तो दूसरी छोटी है उसका बस नहीं चल रहा है, सहज रीति से उसके लय में चलना आरंभ करती है। और उसने इसको नाम दिया सिंक्रोनिस, मतलब उस वैज्ञानिक ने तो लयबद्धता नाम दिया, फिर 40-50 वर्ष पहले अभी कोई कार्ल गुस्ताव जिंग कर का नाम से वैज्ञानिक हुआ, उसने इसको नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। और उसने कहा कि ये सिंक्रोनिसिटी का जो नियम है, जो सिद्धांत है, यह सिर्फ घड़ी पर काम नहीं करता है, यह सिर्फ सितार पर काम नहीं करता है, ये सिर्फ वीणा पर काम नहीं करता है, जीवन के हर डायमेंशन पर ये सिद्धांत स्वीकार किया गया। कौन सा? कि बड़ी सितार बड़ी घड़ी अपने स्पंदन से अपने टिक टिक से दूसरी पास में रखी हुई। हाँ, कमरा कैसा? एकांत, ये नोटिस करने वाली बात है। एकांत कमरा हो बंद, पता है ना? जो पहला वाला उसमें बता, और ये भी मेहमान था तो मेहमान को तो सेपरेट दे दिया जाता है ना। एकांत हो तब ऐसा होता है कि जो बड़ी वाली है वो छोटे वाले पर अपना वाइब्रेशन भेजेगी। वाइब्रेशन इधर हो रहा है लेकिन पहुंचेगा उसके पास, और न सिर्फ उसके पास पहुंचेगा लेकिन ये जिस स्थिति में है उसी स्थिति में भी इसको ला देगा। यह है लयबद्धता, यह है सिंक्रोनिसिटी। अब हमने आपको कहा था बाबा हमको मंदिर लायक बना रहा है, मतलब मूर्ति बना रहा है, और मूर्ति की विशेषता हमने क्या देखी? मौन। मौन उसकी विशेषता है, उसको हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ऐसे ही हम ही तो है ना वो मूर्तियां। बाबा कहते हैं ना तुम्हारे ही मंदिर है, तुम्हारे ही मंदिर है, तुमने चैतन्य में ये सब किया है तब जाके तुम्हारे जड़ यादगार बने हैं वो। तो चैतन्य में, चैतन्य मूर्ति में हमको बनना है, उसके लिए बाबा भी क्या कहता है? बच्चे, आज का वरदान क्या था? अभी अभी क्लास हुई है आपकी, पास शब्द की स्मृति से पेपर को पास करने वाले पास विद आनर भव। और उसके स्पष्टीकरण में क्या बताया कि अगर फुल मार्क्स लेने हैं, नहीं जैसे हम परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारे हाथ में प्रश्न पत्र दे दिया जाता है, पहले उत्तर पुस्तिका आती है ताकि आप अपना नाम आदि लिख लो और उसके बाद सबके पास प्रश्न पत्र आता है। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न भी रहते हैं, कुल अंक भी लिखे होते हैं कि टोटल इस प्रश्न पत्र का अंक कितना है। जैसे सपोज 100 लिखा है, अब 100 लिखा है तो जितने भी उसमें प्रश्न है अगर मैं पूरे के पूरे सॉल्व करूंगी तो मार्जिन है कि मुझे 100 में से 100 मिले। एक भी छोड़ दूं तो 100 में से 100 नहीं। तो अगर मैंने लक्ष्य रखा है कि मुझे फुल मार्क्स लेने हैं तो जब मैं प्रश्न पत्र को देखूंगी और प्रश्न पढ़ूंगी, ये कैसा प्रश्न आया है, ये किसने निकाला है पेपर, हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं, ये प्रश्न पत्र निकालने वाला लगता पागल है। और अगर मैं वो सारा लिख दूं उत्तर में कि आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे निकाला, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछेंगे वो तो आपका बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं कि तुमने तोताराम बन के याद किया है या समझ कर। अगर समझा होता तो कितने भी घुमा फिरा के पूछा हम नहीं बोलेंगे कि हमारा सिलेबस में नहीं था, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, और फटाफट लिखने के लिए बैठ जाएंगे। तब बाबा ने कहा फुल मार्क्स लेने हैं तो क्या क्योंकि विस्तार में नहीं जाना, आया है प्रश्न मुझे उत्तर लिखने दो तब जाके मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पास करना है माना लिखते जाओ तभी तो पास होऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा तो 100 में से 100 तो मिले नहीं, तो लिखूंगा तभी तो पास कर लिया ना मैंने, और तब तो मैं पास होऊंगा, 100 में से 100 मिल सकते हैं। तो 3 बातें बोली बाबा ने, पास करना है, पास होना है और पास बैठना है। और उसके लिए बाबा फिर बोलता है, रोज सुबह 3 तिलक लगाओ अपने को, मैं आत्मा बिंदी, मेरे पिता परमात्मा बिंदी, ड्रामा में जो आया उसको भी बिंदी। पेपर आएगा ना, तो जब हम योग में बैठेंगे क्या होने वाला है बोलो? शुरुआत करेंगे, मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा को याद करने जा रही हूँ, बाबा गुड मॉर्निंग, फिर क्या होगा? ड्रामा वाला पेपर आएगा ना, ऐसे ही होने वाला है ना। लेकिन करना क्या है, उसमें लक्ष्य रखना होता है, लक्ष्य रखना होता है, मुझे इस योग के पीरियड में फुल पास होना है। आधे घंटा योग करने बैठी हूँ, आधे घंटे की रिजल्ट बराबर आधे घंटे वाली होनी चाहिए, ना कि 5 मिनट योग और 25 मिनट इधर उधर चक्कर लगा के आए। तो फिर क्या करना है उसमें? वो जो ड्रामा वाली बातें आएगी उसको साक्षी होकर देखना है, उसके प्रवाह में बहना नहीं है। मौन की बात चल रही है, मौन मूर्ति की विशेषता, मौन। ड्रामा की बातें चलो आ भी गई, पर मैं उसके प्रवाह में नहीं बहूं, डिस्टेंस बना के रखूं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई, पर वास्तव में थी तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर नाम दिया सोशल डिस्टेंसिंग, हुआ तो उल्टा, बल्कि सोशल रीति से बहुत करीब हो गए। ऑनलाइन पहले थोड़ी जुड़ते थे हम लोग, और ही सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई। नाम भले दिया सोशल डिस्टेंसिंग, पर वो कम हो गई, फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ गई थी। तो जब हम योग में बैठे, मन हमारा बातें खड़ी करेगा, मन को मौन में रखना है। मुख का मौन तो है ही, चुप बैठ जाते हैं, मन का मौन, और वो मौन का मौन योग में सधे, इसलिए दिन भर भी मन का मौन। और वो दिन भर के मन के मौन की विशेषता क्या दे दी हमने, कि चलो बोलो भले, पर बाहर वालों से नहीं, अपने आप से बोलो, परमात्मा से बोलो, दिशा बदलवाई। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना होता है ना। आज हम स्कूल पढ़े तो पहले ABCD सिखाया, फिर शब्द सिखाए, फिर सेंटेंस सिखाए, तो एकदम मन मौन नहीं हो सकेगा जो इतना चल रहा है। तो पहले स्टेज में कहा कि चलो नहीं हो रहा है मौन, तो कम से कम दिशा तो बदल दो उसकी, कि बाहर वालों के साथ बोल रहे थे, क्योंकि बोलने की आदत है तो अंदर प्रेशर तो बनता है ना बोलने का, और फिर भी तो क्या होगा, वो फूटेगा ना, इसलिए उसको कहा दिशा चेंज कर दो, अंदर अपने आप से बातें करो, अपने पिता परमात्मा से बातें करो। लेकिन ये कंप्लीट मौन नहीं है, ये तो बात चल रही है ना, पर ये पहले स्टेज है, ये पहले स्टेज है, लेकिन उससे भी परे जाना है कि रियल मौन होना है। जब रियल मौन होंगे ना, तब वो काम होगा। कौन सा? जो इन सितारों में हुआ, जो घड़ियों में हुआ, जो हम चाह रहे कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए, जो मैं चाह रही हूं कि इतने जो मेरे अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी है वो छूट जाए, नहीं छूट रही है, लेकिन अगर मैं कुछ समय के लिए मन को भी मौन कर देती हूँ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके, जिसको बाबा कहता है अव्यक्त मूल्यों में, कुछ नहीं करो, बस परम धाम में आके मेरे पास बैठ जाओ। आती है बातें अव्यक्त मूल्यों में? तो बाबा अगर कह रहा तो क्या ऐसे ही बोल रहा है क्या? कुछ तो उसके पीछे साइंस होगा ना, जिस साइंस को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। ये तो दुनिया वाले वैज्ञानिक, देखो प्राकृतिक नियम घट रहा है, लेकिन कैसे घट रहा है उसको वैज्ञानिक समझ रहा है और उसको एक नाम दे रहा है। वो तो परम वैज्ञानिक है, वो तो परम वैज्ञानिक है, उसको पता है इसके पीछे का साइंस, और इसलिए वो कहता है कुछ मत करो, सिर्फ मेरे पास परम धाम में आके बैठ जाओ। इसलिए कहता है मेरे पास आके बैठो। आज भी कहा तीन पास में एक पास क्या है? मेरे पास बैठना है। और क्यों कहता है परम धाम में? क्योंकि ये जो विज्ञान काम करता है कहाँ काम करता है? एकांत में काम करता है। जो वीणा का उदाहरण दिया कि कमरे में खाली हो, कमरा बिल्कुल, दरवाजे खिड़की बंद, तो परम धाम माना क्या? दुनिया की भौतिकता से बिल्कुल खाली। समझ में आ रही बात? भौतिकता से एकदम खाली है वो, और वहां पे वो परम आत्मा, मतलब वो बड़ी वाली घड़ी, बड़ी वाली वीणा, बड़ी वाली सितार पहले से मौजूद है। बस मुझ छोटी वाली घड़ी को, मुझ छोटी वाली वीणा को, मुझ छोटी वाली सितार को वहां जाके चुपचाप बैठना है। और चुपचाप का मतलब मन भी नहीं बोले, थॉट्स भी नहीं आए। और उसके लिए तभी बाबा ने कहा ड्रामा को फुल स्टॉप, कि आएगी अगर मैं योग में बैठी हूं करने, वो बातें आएगी, उसको डिस्टेंस बना के रखना, मैं इससे अलग हूं, ये अलग है। जैसे बाबा ने हमें आते ही ज्ञान दिया कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, ऐसे ही एक स्टेप आगे बढ़े हम, कि शरीर से तो मैं अलग हूं, मैं मन से भी अलग हूं, मैं मन नहीं हूं, मन तो एक फैकल्टी है, मैं मन थोड़ी हूं। जब परमधाम से आए थे मन लेकर आए थे क्या? परमधाम में मन होता है? बाबा कहते हैं ना वहां तुम जाओगे तो तुम्हें थॉट भी नहीं रहेगा कि मैं बाबा के पास बैठा हूं, वहां तो सिर्फ और सिर्फ विश्राम है और कुछ नहीं है। मतलब मन भी हम नहीं लेकर आते हैं वहां से। इसीलिए तो ये बात आती है कि धर्मराजपुरी में हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे का मतलब क्या है? एक हिसाब किताब शरीर के द्वारा चुकाना और एक हिसाब किताब मन के स्तर पर चुकाना। कई बार व्यक्ति बाहर से तो ठीक होता है लेकिन कहता है मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मन पे क्या बीतती है, मेरे जीवन में क्या बातें आती है और मेरा मन कितना परेशान रहता है, सफरिंग्स में रहता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? धर्मराजपुरी की बात यही है और कुछ नहीं है, कि इस मन से भी मुझे पार जाना है। आत्मा शरीर से तो जुदा हो भी जाती है, शरीर से जुदा होना माना छुट्टी दे दिया, कुछ काम नहीं करना, बैठ गई, लेकिन मन अभी भी चल रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिली अभी भी। इसीलिए तो आजकल लोगों को सुबह उठकर फ्रेशनेस क्यों नहीं मिल रही है? भाई शरीर को तो छुट्टी दे दिया, गैराज में गाड़ी डाल देते हैं हम, बिस्तर में सो जाना माना गाड़ी को गैराज में डाल दिया, पर इंजन कहाँ बंद हो रही है हमारी? मन इंजन है ना, इंजन तो चल रही है, चल रही है। तो फिर सुबह जब उठे तो वो जो एक एहसास होना चाहिए था कि मैं गहरी नींद करके उठी हूं, वो नहीं होता है। तो दोनों से डिटैच होना बहुत जरूरी है। सिर्फ शरीर से डिटैच होकर बैठ के योग करने वो भी एक है, परंतु उससे भी आगे मन से भी, कि मन को भी मौन, और वो होगा ठीक है बातें आ रही हैं जीवन में, जो बातें आई थी वो आ रही है, लेकिन मैं यूं, वो एक दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ऐसे देख रही हूं। तो ये मन का स्वभाव है, जैसे छोटे बच्चे का स्वभाव होता है कि अकेला छोड़ दो कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा, लेकिन अगर कोई उसको जाके देखे, उसको थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि कोई मुझे देख रहा है, किसी की नजरें मेरे पर टिकी हुई है, तो वो जो हरकत कर रहा होता है ना, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते होते जीरो पे चली जाती। देखा है बच्चों को कभी ऐसे? ये मन भी बिल्कुल वैसा ही बच्चा है। निगरानी नहीं रखेंगे, सुपरवाइजिंग नहीं करेंगे, ये उद्यमी बना रहेगा। आजकल सीसीटीवी कैमरास किस लिए लगाए हैं सीसीटीवी कैमरा? तो इधर भी सीसीटीवी कैमरा चाहिए। हाँ भाई, वो सीसीटीवी कैमरे रखे हैं तो थोड़ा बहुत चोरी पकड़ में आ रही है ना, तो चोरी करने वाला थोड़ा सा सतर्क हो गया है ना, तो ये उधम मचाने वाला सतर्क हो जाएगा ना, तो इधर भी एक सीसीटीवी कैमरा। समझ में आया? एक सीसीटीवी कैमरा, मैं आत्मा दृष्टा हूं, मैं देख रही हूं। इंटरफियर नहीं करना, सीसीटीवी कैमरा नोट करता है, कोई इंटरफियर नहीं करता है, चोर तू चोरी कर, अभी भी पकड़ो नहीं, कुछ नहीं बोलने वाला है सीसीटीवी। बस वो सिर्फ क्या करने वाला है, अपने में सीन को कैद करने वाला है, बोलने वाला कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं बोलना है। वो आ रहा है मन के, मन माना विचार के रूप में, जो भी आ रहा है जा रहा है, जस्ट मैं देख रही हूं। उसके साथ बहना नहीं उसकी धारा में, बल्कि धारा का उल्टा राधा, तब जाके कृष्ण को प्रिय बनेंगे। ऐसे ही थोड़ी कृष्ण को प्रिय बनते, राधा ऐसे ही थोड़ी प्यारी थी, मतलब भगवान को, उसके साथ हम ऐसे कनेक्ट होंगे तब उसको प्रिय होंगे हम। तो कुछ इसीलिए हमने पहले दिन कहा था कि आपको 10 से 10:30 का टाइम, 5 से 6 का टाइम एकांत में छोड़ रहे हैं हम आपको। समझो मौन के महत्व को, हर बार बाहर से अंदर जा रहा है। अनुभव में कब उतरोगे? अपना अनुभव, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। समय बहुत आगे बढ़ गया है, एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आए हैं। बाबा की मूल्यों को पढ़ते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, बहुत बड़ा फासला दिखता है कि बाबा जो चाहता है और मैं जो बनी हूं अभी, तो उसमें बहुत फासला दिख रहा है। इस बड़े फासले को ऐसे ही सिर्फ क्लास सुनकर, कमेंट या सुनकर नहीं पाटा जा सकता है। इस बड़े फासले को कम करना है, तीव्र गति से मौन को धारण करना पड़ेगा। और वो योग की स्थिति में जब मैं बैठूं और वो मौन साधे मेरा, उसके लिए फिर दिन भर में ये अपनाना पड़ता है कि मुख का मौन रखो मन, फिर वहां के लिए हम मन की, मौन की डेफिनेशन देते हैं, इधर नहीं बोलकर इधर बोलो, उसके साथ बोलो, लेकिन उसके आगे की स्टेज है बोलना ही बंद कर दो, शांत हो जाओ। बड़ी वाली घड़ी आपके ऊपर अपने स्पंदन भेजेगी और आपको अपने लय में बांधेगी, अपने समान बना देगी। यही तो लक्ष्य है भट्टी का, कि चलो संपन्नता की ओर, चलो संपन्न बने, संपूर्ण बने, बाप समान बने, यही है ना लक्ष्य हमारा। तो अवश्य ही आप सभी ने मौन का जो आपको यहाँ पे चांस मिला, क्योंकि हम तो कहते हैं ना भाई लौकिक में जिम्मेवारियां होती है, तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही सोचते हैं बैठते हैं फिर कोई ना कोई बात हमें ये करना है वो करना है सोच के खींच लेती है। और तब हम बाबा को मन ही मन बोलते हैं, काश बाबा कुछ ऐसे दिन मिल जाए हमें कुछ भी नहीं करना हो, सिर्फ हम आपकी यादों में खोए रहे। करते हैं बाबा को अंदर ही अंदर इस प्रकार के रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट बाबा ने सुनी आपकी, आपको ये चांस दिया। हाँ, ये चांस माना क्या, कुछ लोग तो मानसरोवर में भी कर रहे हैं भट्टी, कुछ लोग तो ज्ञान सरोवर में कर रहे हैं भट्टी, कुछ लोग तो शांतिवन में कर रहे हैं भट्टी, तो चांस तो उनको भी मिला, लेकिन आपको तो हाई क्वालिटी वाला हाई ग्रेड वाला चांस मिला है। एक ऐसा स्थान जहां के कण कण में तपस्या के वाइब्रेशन है, जहां के कण कण में रूहानियत की इत्र, रूहानियत की खुशबू महक रही है। इतना सुंदर वातावरण आपको बाबा ने दिया कि बच्चे इस वातावरण में आप निश्चिंत रहो, कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं बैठा हूं। तुम पुरुषार्थ करो बाप समान बनने का। ये शरीर है, अपने नियम के अनुसार इसको भूख लगेगी, भूख की भी जिम्मेवारी मेरी, मैं भोजन परोसूंगा, तुमको नहीं सोचना है आज क्या बनेगा। तुम आना रेडीमेड, तुमको थालियां दी जाएगी, हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त। तभी कहा कि बाप जब हमारे पर इतना न्योच्छावर होता है, हमें भी उस पर कितना न्योच्छावर होना चाहिए। तो हमें सफलता मिले उसके लिए जरूरी क्या है, आज का स्लोगन याद कर लो, बोलो स्लोगन क्या था आज का। हाँ, जो परमात्मा के प्यार में कुर्बान हो जाते हैं वे ही सफलता मूरत बनते हैं। तो हमें उसके प्यार में कुर्बान होने की आवश्यकता है कि बाबा कितनी सिंपल डेफिनेशन तुमने हमें दी, बस बच्चे मेरे पास आकर बैठ जाओ, परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। कितना सिंपल मेथड, भक्ति में क्या नहीं किया, मंदिर के सामने मूर्ति के सामने थाली सजाई, दीप जलाया, धूप जलाया, आराधना की, क्या नहीं किया। यहाँ पे आके कहा तुम खुद ये दीपक जला लो। उपवास की, उपवास का सही अर्थ क्या होता है, उप माना निकट, वास माना बैठना, निकट बैठो। और हमने उसको, और निकट बैठने का बेनिफिट क्या होगा, जो कहा ना उस घड़ी की टिक टिक इसमें आंदोलन पैदा कर रही, इसमें मूवमेंट, सिर्फ न सिर्फ उसमें आंदोलन पैदा कर रही, मूवमेंट ला रही है, उसको अपने लय में भी लेके आ रही है कि जो टाइम इधर है वही टाइम उधर रहेगा, जो संगीत इसमें से निकल रहा है वही संगीत इस वाली में से निकलेगा। और उसमें से तो कौन सा संगीत निकल रहा है, आनंद का सागर है वो, दया का, करुणा का सागर है वो, ज्ञान का सागर है वो, सर्वशक्तिवान है, यही तो उसमें से निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है वो। जब वो वाइब्रेशन मेरे को छुएगा, छुएगा मतलब जैसे कहा ना तार तो उसमें है, उस वीणा में, हाँ उसमें कुछ क्या कर रहा है, सिर्फ वो तार सोए हुए उसको जगा दे रहा है, क्योंकि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, जो गुण उसमें है वो मेरे में भी है, पर सोए पड़े हैं वो, अपने स्पंदन अपने वाइब्रेशन से मुझे क्या कर देता है, जगा देता है, और मैं उस आनंद में भरपूरता का एहसास करती हूँ। और उस भरपूरता के साथ फिर हम कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो वो मेरे संगीत गुणों का, प्यार का, खुशी का, वो संगीत लहरियां जिनके साथ कार्य कर रही हूं, जिन वातावरण में कर रही हूं, वहां नहीं फैलेगी क्या? वो करुणा मेरे अंदर नहीं जागेगी क्या? इस वर्ष का थीम क्या है? दया और करुणा ही रखा है ना। तो अभी मनसा सेवा अपने आप होने लगेगी, अपने आप। आज सुन सुन करके लोग थक चुके हैं, उन्हें अनुभव की जरूरत है कि हम अपनी स्थिति इतनी, जैसे कान मूर्ति के सामने, उसके सामने अपनी विश रख दी और पूरी हो गई। चैतन्य में हम बने हैं तब तो यादगार बने हैं ना। तो हम अपनी ऐसी स्थिति बना लें कि हम जिनके करीब रहते हो, हमारे करीब जो आते हैं, हमारे से वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन सतत निकलती रहे कि सामने वाला भी उसी लय में बद्ध हो जाए। वो दुखी था, वो भी सुखी बन गया मेरे सुखी वाइब्रेशन से। उसके अंदर भी सुख का गुण तो है ना, हर आत्मा में है, पर सोया पड़ा है। बस मेरे स्पंदन वहां तक जाएंगे जैसे सूरज उगते ही सुबह होती और आंख खुलती है, ऐसी बस वो वाइब्रेशन जाएगा, अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा, ज्ञान का सूर्य जैसे उसके जीवन में आ गया, आंख खुल गई, अज्ञानता से अंधकार से बाहर आ गए और ज्ञान के जीवन में। सिर्फ इसलिए कहते हैं ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञान तो साइंस वालों ने शब्द यूज किया है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं विज्ञान का मीनिंग? योग। और योग माना क्या? ज्ञान माना ज्ञान, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान माना उस ज्ञान की अनुभूति। सिर्फ ज्ञान सुन के रख लिया तो क्या हुआ? अनुभूति नहीं हुई। तो हम जब उस अनुभूति में रहेंगे, दूसरे भी अपने आप वो अनुभूति करना आरंभ करेंगे, तब हम कहेंगे सचमुच हम बंदर से मंदिर लायक बने हैं। और सच में हम पहले कल्प में बने थे, तब तो यादगार में हमारे वो मंदिर खड़े हुए हैं। तो इतनी भी स्मृति ला ले ना, जैसे बाबा ने कहा ना कि सिर्फ इतनी भी स्मृति ला लो कि मुझे फुल मार्क्स लेना है, तो उसके आधार से प्रश्न पत्र में जो पूछा गया उत्तर पुस्तिका में लिखते जाओगे। इतनी भी स्मृति रख ले, हमारे मंदिर बने हैं इसका मतलब हम पहले सफल हुए थे, तभी तो बने हैं। तो अभी हम बने हैं मतलब हमने कल्प पहले किया है, सफलता मिली है, बस एक संकल्प कर लो और सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। और चलते फिरते चैतन्य मंदिर देवालय हम होंगे, चलती फिरती मूर्तियों से लोगों को साक्षात्कार होंगे। लोगों किसी, कोई बाबा कहते हैं ना, अंत में कोई भक्ति, कोई मुक्ति, कोई शक्ति मांगने आएगा, तो जिसको जो चाहिए होगा हमसे उसको मिलता जाएगा। और हम सचमुच बंदर से मंदिर, बाबा की मेहनत सफल होगी। जैसे एक बाप की मेहनत होती इस बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर जब बच जाता है, आप समझ सकते हैं बाप को कितनी खुशी होती होगी, इस बाप को कितनी खुशी होगी। आया है किनके बीच में? बंदरों के बीच में। लेकिन लक्ष्य क्या रखा है? इन बंदरों को क्या बनाना है? मंदिर लायक। और जब वो देखेगा इस संगम पर ही मेरे बच्चे मंदिर लायक बन गए हैं, उस बाप को कितनी खुशी होगी, कितनी उसकी दुआएं और आशीर्वाद हमें मिलेंगी। तो हम तो यूं ही दुआओं और आशीर्वाद से पलते पलते आगे बढ़ जाएंगे। तो ये महत्व है मौन का। तो यहां रहते चाहे जितना भी इसका अटेंशन दे पाए उतना ही बहुत है, लेकिन अब जब आप लौट रहे हो, ये संकल्प करके जाओ जीवन में मौन को स्थान देना है, यूं ही उड़ा नहीं देना है। उसके पीछे की लॉजिक को, उसके पीछे के विज्ञान को समझो। बहुत तीव्र गति से हमारे में परिवर्तन आ सकता है। हमको लगता है कि चुपचाप बैठ जाना, इससे क्या होने वाला, लेकिन सारा क्लैरिटी आ गई अभी, क्लैरिटी आ गई तो चुपचाप का ही बहुत महत्व है। ओम शांति।
Thank you.